नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, ऑलिवर थियोबाल्ड की मशीन लर्निंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, ए प्लेन इंग्लिश इंट्रोडक्शन का दूसरा संस्करण। मशीन लर्निंग की आरंभिक समझ देने वाली गैर कथा तकनीकी पुस्तक है। इसका उद्देश्य पाठक को भारी गणित, पूर्व प्रोग्रामिंग अनुभव या डेटा साइंस की पृष्ठभूमि मानकर चलने के बजाय पहले यह समझाना है कि डेटा से सीखने वाली प्रणाली वास्तव में करती क्या है। पुस्तक पारंपरिक नियम आधारित प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग के अंतर से शुरुआत करती है, फिर डेटा तैयार करने, पैटर्न खोजने, अनुमान लगाने और मॉडल की गुणवत्ता परखने जैसे चरणों तक जाती है। इसमें रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क और एंसेंबल मॉडलिंग का परिचय है। बाद के हिस्सों में पाइथन और जुपिटर नोटबुक के माध्यम से घरों की कीमत का अनुमान लगाने वाला उदाहरण भी दिया गया है। इसलिए यह विशेषज्ञता का पूर्ण पाठ्यपुस्तक विकल्प नहीं, बल्कि शब्दावली, कार्यप्रवाह और बुनियादी निर्णयों का व्यावहारिक नक्शा है, जिससे नया पाठक आगे की तकनीकी पढ़ाई को संदर्भ सहित समझ सके। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, नियम लिखने से डेटा के आधार पर मॉडल सीखने तक का बदलाव। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण आधार यह है कि मशीन लर्निंग को केवल एआई का आकर्षक नाम नहीं, बल्कि समस्या हल करने की अलग प्रोग्रामिंग पद्धति के रूप में देखा जाए। पारंपरिक प्रोग्राम में डेवलपर नियम लिखता है, इनपुट देता है और अपेक्षित आउटपुट प्राप्त करता है। इसके विपरीत मशीन लर्निंग में उदाहरणों वाला डेटा और अपेक्षित परिणाम देकर मॉडल को संबंध सीखने दिया जाता है। फिर वही मॉडल नए अनदेखे डेटा पर अनुमान या वर्गीकरण करता है। थियोबाल्ड इस अंतर को अनुभव से सीखने की मानवीय प्रक्रिया के निकट उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। इसका लाभ यह है कि पाठक समझता है कि मशीन अपने आप चेतन ढंग से नहीं सोचती, वह उपलब्ध उदाहरणों में सांख्यिकीय पैटर्न पकड़ती है। यही समझ आगे आने वाले हर विषय के लिए जरूरी है, क्योंकि डेटा की गुणवत्ता, चुना गया लक्ष्य और मूल्यांकन का तरीका मॉडल के व्यवहार को आकार देते हैं। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि मशीन लर्निंग तब उपयोगी है जब सभी नियम पहले से लिखना कठिन हो, जैसे कीमत का अनुमान, ग्राहक समूहों की पहचान या किसी वस्तु की श्रेणी तय करना। इस प्रकार शुरुआती पाठक के लिए मुख्य सीख तकनीक का नाम याद करना नहीं, बल्कि समस्या, डेटा, मॉडल और अनुमान के संबंध को समझना है। दूसरा, डेटा स्क्रबिंग से विश्लेषण योग्य इनपुट तैयार करने की प्रक्रिया। पुस्तक मशीन लर्निंग को एल्गोरिदम चुनने भर की गतिविधि नहीं मानती, वह डेटा स्क्रबिंग को मॉडल निर्माण का आवश्यक पूर्व चरण बताती है। वास्तविक डेटा में खाली मान, असंगत प्रविष्टियां, अलग प्रारूप और श्रेणीबद्ध जानकारी जैसी बाधाएं होती है। यदि इन्हें समझे बिना मॉडल में भेज दिया जाए तो परिणाम भ्रामक हो सकते हैं या गणना चल ही नहीं सकती। इस संदर्भ में वन हॉट एन्कोडिंग का परिचय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शहर, संपत्ति का प्रकार या रंग जैसी श्रेणियों को संख्यात्मक रूप में बदलने का तरीका है। बिनिंग भी निरंतर मानों को उपयोगी समूहों में व्यवस्थित करने की एक बुनियादी तकनीक के रूप में आती है। अनुपस्थित मानों से निपटने का प्रश्न पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि हर रिक्त कोशिका को एक ही ढंग से भरना उचित नहीं होता। चयन डेटा के अर्थ और समस्या के संदर्भ पर निर्भर करता है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि मॉडल की कथित बुद्धिमत्ता उसके इनपुट से अलग नहीं है। साफ, सुसंगत और उद्देश्य से जुड़ा डेटा होने पर ही रिग्रेशन, क्लस्टरिंग या ट्री आधारित विधियां अर्थपूर्ण पैटर्न दे सकती हैं। शुरुआती स्तर पर यह दृष्टि विशेष उपयोगी है, क्योंकि यह चमकदार एल्गोरिदम से पहले डेटा की जिम्मेदार तैयारी पर ध्यान केंद्रित कराती है। तीसरा, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और डिसीजन ट्री से अलग प्रकार के प्रश्नों का समाधान। पुस्तक कई बुनियादी तकनीकों को एक ही उद्देश्य वाली विधियां मानकर प्रस्तुत नहीं करती। रिग्रेशन का उपयोग उस स्थिति में समझाया जाता है जहां किसी संख्यात्मक परिणाम का अनुमान चाहिए, जैसे घर की कीमत। यहां मॉडल विशेषताओं और लक्ष्य मान के बीच संबंध खोजने की कोशिश करता है। क्लस्टरिंग का काम अलग है, इसमें पहले से तय उत्तर या लेबल अनिवार्य नहीं होते, बल्कि समान गुणों वाली प्रविष्टियों के समूह खोजे जाते हैं। इसलिए यह ग्राहक वर्गों, व्यवहार के पैटर्न या डेटा में छिपी संरचना को देखने में उपयोगी हो सकती है। डिसीजन ट्री वर्गीकरण को क्रमिक प्रश्नों और शाखाओं के रूप में समझने योग्य बनाता है। किसी विशेषता के आधार पर विभाजन करते हुए वह किसी रिकॉर्ड को एक श्रेणी तक पहुंचाता है। इन तीनों विषयों को साथ रखने का मूल्य यह है कि पाठक पहले प्रश्न की प्रकृति पहचानना सीखता है। क्या उत्तर एक संख्या है, क्या अनजाने समूह खोजने हैं या क्या किसी ज्ञात वर्ग में निर्णय देना है? एल्गोरिदम का चुनाव इसी निर्णय से शुरू होता है। पुस्तक की सरल भाषा जटिल गणितीय व्युत्पत्ति के बजाय कार्यात्मक अंतर पर केंद्रित है। इसकी सीमा भी यही है। पाठक को बाद में सांख्यिकी और गहरी तकनीकी सामग्री से इन विधियों की धारणाएं, सीमाएं और गणित विस्तार से सीखना होगा। चौथा प्रशिक्षण के फोल्ड वैलिडेशन और बायस वेरिएंस से विश्वसनीयता जांचना। मॉडल ने प्रशिक्षण डेटा पर अच्छा परिणाम दिया, यह अकेले उसके उपयोगी होने का प्रमाण नहीं है। पुस्तक इस व्यावहारिक जोखिम को वैलिडेशन, बायस और वेरिएंस की आरंभिक चर्चा के जरिए सामने लाती है। डेटा को अलग हिस्सों में बांटने का उद्देश्य यह देखना है कि मॉडल उन उदाहरणों पर कैसा काम करता है जिन्हें उसने सीखते समय नहीं देखा था। के फोर्ड वैलिडेशन इस जांच को कई विभाजनों पर दोहराने का तरीका देता है, जिससे किसी एक संयोगपूर्ण विभाजन पर निर्भरता घटती है। बायस और वेरिएंस का विचार दो विपरीत विफलताओं को समझने में मदद करता है। बहुत सरल मॉडल उपयोगी संबंध पकड़ नहीं पाता, जबकि अत्यधिक जटिल मॉडल प्रशिक्षण उदाहरणों के शोर को भी नियम समझ सकता है। दूसरा मामला नए डेटा पर खराब प्रदर्शन दे सकता है। यह शुरुआती पाठक के लिए महत्वपूर्ण अनुशासन है, क्योंकि इससे सटीकता को अंतिम सत्य मानने के बजाय परीक्षण की विधि, डेटा विभाजन और सामान्यीकरण पर ध्यान जाता है। पुस्तक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और ग्रिड सर्च का भी परिचय देती है। इनका आशय विकल्पों को व्यवस्थित ढंग से परखना है, न कि मनमाने ढंग से सेटिंग बदलना। हालांकि ये अवधारणाएं आगे अधिक गहराई मांगती है, पुस्तक इतना स्पष्ट करती है कि मॉडल बनाना और मॉडल पर भरोसा करने लायक प्रमाण जुटाना दो अलग कार्य है। अंत में पाइथन में घर मूल्य अनुमान का उदाहरण और एंसेंबल मॉडलिंग का प्रवेश। पुस्तक के बाद के व्यावहारिक हिस्से अवधारणा को वास्तविक कार्यप्रवाह से जोड़ते हैं। पाइथन और जुपिटर नोटबुक के उपयोग के साथ पाठक लाइब्रेरी आयात करने, डेटा लोड करने, उसे साफ करने, प्रशिक्षण और परीक्षण हिस्सों में बांटने, मॉडल चुनने और परिणाम जांचने की क्रमबद्ध प्रक्रिया देखता है। घर की कीमत का अनुमान लगाने वाला उदाहरण इसलिए उपयुक्त है कि उसका लक्ष्य संख्यात्मक है और उसमें स्थान, आकार या अन्य विशेषताओं जैसी इनपुट जानकारी की भूमिका सहज रूप से समझी जा सकती है। ग्रेडियंट बूस्टिंग का उपयोग एंसेंबल मॉडलिंग की दिशा में प्रवेश कराता है। इसका बुनियादी विचार यह है कि कई सरल या क्रमिक मॉडल मिलकर एकल मॉडल से बेहतर अनुमान दे सकते हैं। पुस्तक इसे विशेषज्ञ स्तर की गहन व्युत्पत्ति के रूप में नहीं, बल्कि मॉडल सुधारने के व्यावहारिक विकल्प के रूप में रखती है। ग्रिड सर्च के माध्यम से सेटिंग्स की तुलना भी प्रयोगशीलता का पाठ देती है। पाठक को केवल दिया गया कोड चलाने के बजाय विशेषताओं या पैरामीटर बदलकर परिणाम देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर भी पुस्तक की स्थिति स्पष्ट है। दो अध्यायों में कोड का परिचय किसी को पाइथन प्रोग्रामर या मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं बनाता। इसका वास्तविक योगदान यह है कि वह अमूर्त शब्दों को डेटा से मॉडल और मूल्यांकन तक की एक दिखाई देने वाली प्रक्रिया में बदल देती है। निष्कर्ष में, मशीन लर्निंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो एआई और डेटा साइंस के बारे में सुनते रहे हैं, लेकिन अभी तक यह नहीं समझते कि मॉडल, डेटा, प्रशिक्षण, परीक्षण और अनुमान आपस में कैसे जुड़े हैं। गैर तकनीकी पेशेवर, जिज्ञासु विद्यार्थी, आरंभिक प्रोग्रामर और ऐसे पाठक जो आगे पाइथन आधारित अध्ययन शुरू करना चाहते हैं, इससे उपयोगी आधार पा सकते हैं। जिन लोगों को तुरंत उन्नत डीप लर्निंग, कठोर गणित, उत्पादन स्तर की प्रणाली डिजाइन या विस्तृत कोडिंग अभ्यास चाहिए, उन्हें इसे प्रारंभिक पड़ाव मानना चाहिए, अंतिम संसाधन नहीं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह मशीन लर्निंग के काम को चरणों में दिखाती है। पाठक को पता चलता है कि उपयोगी मॉडल के लिए डेटा तैयार करना, सही समस्या प्रकार चुनना, अनदेखे डेटा पर जांचना और सेटिंग्स का परीक्षण करना आवश्यक है। रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क और एंसेंबल मॉडलिंग को एक ही स्तर की तकनीकी गहराई से नहीं, बल्कि आरंभिक दिशा देने वाले मानचित्र की तरह रखा गया है। इसी श्रेणी की कई पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान सादी भाषा और अवधारणा से छोटे व्यावहारिक पाइथन उदाहरण की ओर क्रमिक बढ़त है। यह न तो केवल प्रेरक एआई परिचय है, न ही सीधे जटिल गणित में प्रवेश करने वाली पाठ्यपुस्तक। कुछ पाठकों को एक साथ आने वाली मशीन लर्निंग शब्दावली चुनौतीपूर्ण लग सकती है। फिर भी संदर्भों को दोबारा पढ़ते हुए यह पुस्तक आगे के पाठ्यक्रम, दस्तावेज और परियोजनाओं के लिए उपयोगी शब्दकोश और वैचारिक ढांचा प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ओथियोबाल्ड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।